Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
हम भोजन कर रहे हैं, माने मुख और उस भोजन का अंतर पाट रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मैं थाली में रखा हुआ भोजन है, उस भोजन को आप कहां रख रहे हैं? पेट में रख रहे हैं। भोजन का मतलब क्या है? थाली के भोजन को पेट में रखने का ही तो नाम भोजन है। आपने दूरी पाट दी, आपने भोजन किया, माने भोजन में, उस भोजन में और आप में जो दूरी है, वो दूरी आपने दूर कर दी। ऐसे आपको लोक लोकांतर को पाना है तो आपको दूरी तो पाटना पड़ेगा। वैकुंठ जाए बिना, वहां क्रिया हुए बिना, कर्म किए बिना वैकुंठ भी जाएंगे कैसे? हम आपको अपने कक्ष में भी जाना होगा तो चहल कदमी तो करनी पड़ेगी, क्रिया तो करनी पड़ेगी। जो भी वस्तु कार्य होती हैं, वो क्रिया साध्य होती है, क्रिया सापेक्ष होती है। और जो क्रिया होती है ना, ये वस्तु परिच्छिन्नता सापेक्ष होती है। आप इस बात को थोड़ा ध्यान देके सुनेंगे। वस्तु में जो परिवर्तन है वो क्रिया सापेक्ष है। उसमें क्रिया हुए बिना परिवर्तन संभव नहीं है। जैसे आप दही बना रहे हैं, उसमें परिवर्तन आएगा। आपने दूध को गर्म किया, दूध में आपने थोड़ा जामुन डाला। अब जामुन डालने के बाद क्या होगा? वो जामुन उस दूध को विकृत कर देगा। उस दूध में क्रिया होगी और उसमें क्रिया होने के बाद वो दूध नहीं बनेगा। दूध में क्रिया हुए बिना वह दही कैसे बनेगा? दूध में कोई क्रिया ही ना हो तो उस दूध का दही बनना संभव ही नहीं है। वस्तु में जो परिवर्तन है ये क्रिया सापेक्ष है। और जहां क्रिया सापेक्ष परिवर्तन होता है वहां वस्तु को छोटा होना पड़ता है, वस्तु को परिच्छिन्न होना पड़ता है। दूर गमन क्रिया सापेक्ष है और क्रिया वस्तु परिच्छिन्नता सापेक्ष। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आपको हिलना डुलना है तो आप कहां हिलोगे डुलोगे? आप जहां होते हैं वहां हिलेंगे कि आप नहीं होते वहां हिलेंगे? आपको हिलना है, आप जहां हैं वहां हिलोगे कि आप जहां नहीं हैं वहां हिलोगे? आप जहां हैं वहां क्रिया कैसे होगी? आप बोलते हैं ना, यार थोड़ा उधर सरको, तो आप क्या बोलोगे? यार जगह ही नहीं है, उधर जगह नहीं है। जब जगह होगी तो हम सरकेंगे, और जगह ही ना हो तो खालीपन, माने वहां आप सरक सकते हैं जहां आप नहीं है। जहां आप नहीं है वहां सरक सकते हैं, उधर सरको माने आप वहां नहीं है। और मान लो आप सब जगह पर हैं और आपको कोई बोले सरको, तो आप क्या बोलोगे? मां आनंदमयी को किसी ने बोला, मां दुनिया के लोग आपको चाहते हैं, आप थोड़ा दुनिया में यात्रा क्यों नहीं करते हो? जापान के बहुत लोग आपको याद करते हैं, थोड़ा जापान आओगी क्या? मां ने कहा, बेटा यहां तो करवट बदलने की भी जगह नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली। माँ ने कहा कि बेटा यहाँ तो करवट बदलने की भी जगह नहीं है। बोले मैं कहाँ जाऊं, बहुत गहरी बात बोली माँ। अब वो आदमी समझा होगा कि नहीं समझा होगा। माँ ने कहा कि मैं तो ब्रह्म तत्व हूं, मैं सब जगह पर हूं, मैं तो जापान में भी हूं, तुम जहां भी बोलो वहां पर मैं हूं, और जहां मैं हूं ही हूं वहां मैं जा सकती हूं कि नहीं। आप वहां क्रिया कर सकते जहां आप नहीं हैं, आप वहां जा सकते आप जहां नहीं हैं, लेकिन आप पहले से ही वहां मौजूद हो तो जाओगे कैसे? आप अभी सत्संग भवन में आ सकते कि नहीं? आप तीसरे माला पर आप आ सकते हैं? आप इस समय मैं आपको बोलू, मधु बाबू को बोलो कि आप आइए पांचवें माले पर, तीसरे माले पर आइए, आप क्या बोलेंगे? महाराज मैं तो हूं ही, मैं तो तीसरे माले पर ही हूं। मैं बोलू नहीं नहीं आप आ जाइए, आप तीसरे माले पर आ जाइए, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे महाराज आज आप भांग तो नहीं खाए हैं, मैं तो तीसरे ही माले पर हूं, आपके सामने हूं, और आप हमको बोल रहे कि अब तीसरे माले पर आओ। अब तीसरे माले पर आने के लिए हमको चौथे माले पर जाना पड़ेगा, पहले हमें तीसरे माले को छोड़ना पड़ेगा, तीसरे माले में अपना नहीं होना पैदा करना पड़ेगा, और जब नहीं होना यहां होगा तब आप पुनः वापस आप आ सकते हैं। ये नियम है, जहां पर भी हम नहीं होते हैं वहीं पर हमारा गमन संभव है, वहीं पर हमारा जाना संभव है, लेकिन पहले से ही वहां विद्यमान हम हैं वहां न जाना संभव है और न वहां आना संभव है। वस्तु में परिवर्तन, जाना आना आदि क्रिया सापेक्ष है, और क्रिया वस्तु के परिच्छिन्न सापेक्ष, वस्तु छोटी होनी चाहिए, वस्तु परिच्छिन्न होनी चाहिए, तब एक जगह से दूसरे जगह पर वो क्रिया कर सकती है। व्यापक वस्तु में कोई क्रिया संभव नहीं। बालक नचिकेता ने कहा कि आत्म तत्व जिसके बारे में जानना चाहता हूं, हमने सुना है शास्त्र में आकाशवत् सर्वगतश्च नित्या, वो आकाश की तरह सर्वगत नित्य है, आत्म तत्व सर्वगत है, व्यापक है, कणकण में, अब उसमें कैसी क्रिया होगी? और क्रिया ही नहीं होगी उसमें तो उसमें परिवर्तन कैसे होगा? उसमें परिवर्तन नहीं है तो कार्य कैसे होगा? कार्य के लिए वस्तु परिच्छिन्न होना चाहिए, तब उसमें क्रिया होगी, तब उसमें परिवर्तन होगा, और तब वो वस्तु कार्य कहलाएगी। आत्मा में व्यापक होने के कारण कोई क्रिया नहीं, और क्रिया न होने के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन न होने के कारण वो कार्य नहीं, कार्य से परे हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, बोले ना उसमें ना वो कोई कारण है और ना वो किसी का कारण है, ना वो स्वयं कार्य है और ना उसका कोई कार्य है। बहुत गहरी बात बोली बालक नचिकेता ने कहा वो आत्म तत्व कार्य और करण के समुदाय से परे हैं, कारण होने के लिए भी कुछ कारण में क्रिया चाहिए। आत्म तत्व किसी की पैदाइश नहीं है, आत्म तत्व किसी का कार्य नहीं है, किसी का परिणाम नहीं, किसी का विकार नहीं है, और आत्म तत्व किसी का दूसरे का भी कारण नहीं है। कारण होने के लिए भी तो कुछ चाहिए कारण में, कारण में विक्रिया हुए बिना वो कार्य कैसे पैदा करेगा? भाई परमात्मा भी दुनिया को बनाता है ऐसा आप कहेंगे तो उसमें कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ तो कामना कुछ तो माननी पड़ेगी, इच्छा तो माननी पड़ेगी, और इतना इच्छा भी पैदा हुई तो बालक नचिकेता ने कहा वो तत्व हम नहीं चाहते जिसमें इच्छा पैदा हो जाए। आज बालक नचिकेता निरुपाधिक जो सत्य है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अविद्या कामना का संस्पर्श नहीं, ऐसा तत्व न वो कारण हो न वो कार्य हो। ये बहुत गहरी बात पूछ रहे हैं। कार्य करण संघात से जो तत्व परे हैं और जो तत्व भूताच्च भव्याच्च काल से भी परे हैं, जहां पर भी क्रिया होती है वो क्रिया काल सापेक्ष होती है। आप कोई भी क्रिया करते हैं तो वहां पर काल की जरूरत पड़ती है, समय की जरूरत पड़ती है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आया हुआ है, काल कर्म और स्वभाव। आप कोई भी चीज पैदा करते हैं तो वहां तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आपके पास स्वभाव, स्वभाव की जरूरत पड़ती है। स्वभाव, स्वभाव माने स्वधर्म, स्वधर्म माने वहां वस्तु चाहिए। आपको कोई भी चीज पैदा करनी है तो आप शून्य से पैदा नहीं कर सकते, आपको वस्तु को पैदा करना है तो पहले कारण समुदाय चाहिए। आपको मकान बनाना है तो सामग्री तो चाहिए ना। आपको चाय बनाना है तो चाय की सामग्री तो चाहिए, और स्वभाव माने केवल चाय की ही सामग्री चाहिए। आप रोटी बनाने की सामग्री से चाय नहीं बना सकते हैं, इसलिए बहुत गहरे शब्द का प्रयोग किया भागवतकार ने, व्यास जी ने स्वभाव बोला। स्वभाव माने तिल में ही तेल निकालने का स्वभाव है। आप बालू से तेल नहीं निकाल सकते, आपको रोटी बनाना है तो आटा ही चाहिए, आटे में रोटी बनने का स्वभाव। प्रत्येक वस्तु का अपना एक स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुसार वस्तु में परिवर्तन होता है। दुनिया में जिसको पैदा करना है और उसका स्वभाव उसके कारण में होना जरूरी है। आपको गेहूं पैदा करना है तो बीज चाहिए, और वो कौन सा बीज चाहिए? चने का। आप चने के बीज से आप गेहूं पैदा नहीं कर सकते, इसलिए सर्वप्रथम आप देखते चने को हमें पैदा करना है चना चाहिए, उसका बीज है चना चाहिए। ये स्वभाव है, ये वस्तु में उसको पैदा करने का जो स्वभाव है स्वधर्म, वही स्वभाव उसका आश्रय लेना पड़ेगा। ईश्वर ने भी सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले स्वभाव का आश्रय लिया, स्वभाव का आश्रय लिया। मनुष्य को पैदा करना है तो मनुष्य का स्वभाव उसके कारण में है, कारण समुदाय पदार्थ वस्तु है। और उसके बाद फिर दूसरा स्वभाव क्रिया, आप क्रिया को लेना। अब आपको पैदा करना है तो पैदा करने के लिए आपको क्रिया करनी पड़ेगी कि नहीं? वस्तु है, कारण है, अब उसको पैदा करने के लिए परिवर्तन के लिए हमें क्रिया करनी पड़ेगी। बिना किए कुछ होता नहीं है, बिना क्रिया किसी में विकार होता नहीं है। इसलिए कर्म पहले स्वभाव और दूसरे नंबर पर कर्म और तीसरे नंबर पर काल आ गया। आपके पास बहुत सी सामग्री भी है और आप करना भी चाहते हैं लेकिन समय न हो तो जन्यानाम जनक कालो जगताम आश्रयो मता। समय के लिए कहा गया कि वो जन्यों का भी जनक है। दुनिया में जितने भी वस्तुएं पैदा होती हैं उन सभी वस्तुओं को पैदा करने वाला है कौन? काल। काल माने समय, काल माने समय होता है। आपको सत्संग में आना है, क्या चाहिए? समय चाहिए। आप बिना समय क्या कर सकते हैं? आदमी बोलता है ना कि जप करने का क्या नहीं है, समय नहीं है। सत्संग आना तो चाहते हैं लेकिन समय नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण चीज है आपके पास ये समय, कितनी महत्वपूर्ण चीज है। आप बिना समय कुछ नहीं कर सकते। और समय का ऐसा एक प्रभाव है नारायण, बिल्कुल अलग अलग समय होता है। आपके बचपन का समय बहुत अलग था, वो आप उस समय कैसे कूदते थे, बच्चे चलते नहीं मधुबाबू, कभी देखना आप, बच्चे कभी चलते नहीं हो, दौड़ते हैं। आप बच्चों को कभी चलते हुए नहीं देखोगे। जब भी बच्चा चलता है तो चलता नहीं हो, और वो दौड़ता ही रहता है। वो उसको बुलाओ, वो चलते हुए नहीं आता है। वो कैसे आता है? दौड़ते हुए आता है। वो समय है उसका। आप उसको बोलो बेटा धीरे धीरे चलो, नहीं, वो समय है। इतनी ऊर्जा है, इतना स्फुरन है नारायण, वो दौड़ता ही हुआ चलता है। थोड़ा जवान हो गए वो अलग समय है, और जब वृद्धावस्था आती है तो ये समय है, एक ऋतु है, एक समय, एक चक्र है। और वो समय, वो चक्र के अनुसार, समय के चक्र के अनुसार ये सारी दुनिया की चीजें परिवर्तित होती रहती। आप अभी जाके देखना, चारों ओर हरियाली मिलेगी आपको। ऋतु का चक्र है, पूरी धरती मानो हरियाली की चादर से बिछी हुई। आपको हरा 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 पेड़ पौधे, और गर्मी के दिनों में जाओ आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, सारी धरती खाली। आपको न देखने की इच्छा होगी, आपको लगेगा कि यहां तो कुछ भी नहीं, और भयंकर गर्मी, ये प्रलय है, प्रलय है। ये क्या है? प्रलय सृष्टि का प्रारंभ वर्षा ऋतु से। अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु पैदा हो जाते, पता नहीं कहां से आ जाते, और उसके बाद फिर ठंडी के समय कुछ अलग ढंग की प्रकृति हो जाती है, और जब गर्मी का समय आता है तो सारी प्रकृति सभी पदार्थों को अपने में विलीन कर लेती है। प्रलय है, मैंने साल में एक, साल में एक बार सृष्टि पालन और संहार, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक साल में तीनों ऋतु आती रहती हैं। और इस ऋतुओं के चक्र को आप देखना, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। वर्षा ऋतु ना हो तो ठंडी की ऋतु नहीं आई, और ठंडी की ऋतु ना हो तो गर्मी की नहीं आई, गर्मी की ना हो तो पूरा बारिश की नहीं आई। ये समय का चक्र, और बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे हमारे जीवन में भी एक समय का चक्र है। बच्चे थे, आहा, वो अलग समय था, और वो आनंद भी अलग था। बच्चे होने का अलग आनंद, और जवान होने का, अरे वो भी आनंद, अलग आनंद है। और बूढ़े होने का, आपको लगता है कि नहीं? लगना चाहिए। बूढ़े होने का भी एक आनंद है, आप मानो तो वो भी एक आनंद है। एक महात्मा जी थे, 115 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। मैं उनके पास जाता था, बहुत सिद्ध पुरुष थे वो, अपने आश्रम के बहुत सारे लोग जाते थे। वो एक चीज बोलते थे, करो करो, जप करो, ध्यान करो, हमको बोलते थे। वो तो छोटे छोटे थे, बड़ा आनंद आता है बुढ़ापे में, बड़ा आनंद आता है। वो एक अक्सर बोलते रहते थे, बोले जप करो, ध्यान करो, बुढ़ापे में बड़ा आनंद आता है। तो एक दिन मैंने पूछा, महाराज बुढ़ापे में आनंद आता है, ये बात क्या है? उन्हें कहा कि आप जवानी में साधना करोगे, समझ पैदा करोगे, विवेक पैदा करोगे, बोले वृद्धावस्था बहुत सुखद चीज है, बोले सारे मन के विकार कामनाएं अपने आप शांत हो जाती है, मन बहुत शांत हो जाता, समझदार हो जाता है आदमी, समझदार हो जाता है। और हमारे जीवन में जितने भी दुख है ना, ना समझी के दुख है हमारे जीवन में जो भी दुख है वो सारे दुख नारायण नासमझी से पैदा होते हैं, झगड़े झंझट टेंशन डिप्रेशन बहुत सारी चीजें हम पैदा करते हैं, उसमें समझदारी नहीं होती। बहुत छोटी छोटी चीजों में आदमी उलझता है। दो बच्चे लड़ रहे हैं, किसके लिए? एक चॉकलेट के लिए। मान लो दो चॉकलेट हैं, दोनों सोच रहे कि हमको पूरी मिल जाए, वो बोला हमको दोनों दो, वो बोला हमको दोनों दो, समझदारी नहीं है, लड़ रहे हैं। और हम कई बार बूढ़े होके भी ऐसे ही लड़ते हैं। एक बार मैं अनुष्ठान में था वृंदावन में, कोई दो पति पत्नी आए मेरे पास एटा जी ने, बड़ा प्रेम था उनका, अक्सर आते रहते थे वृंदावन। तो उस दिन वो साथ साथ नहीं आए मेरे पास, पहले पुरुष आया और 15-20 मिनट के बाद फिर वो राजमाता आ गई। और दोनों आए तो अगल 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 बगल में नहीं बैठे, वो विपरीत दिशा में बैठे, एक इधर बैठा एक उधर बैठा। तो मैंने पूछा आज भारत पाकिस्तान बात क्या है हमने कहा भाई बात क्या है, आज भारत पाकिस्तान एक साथ नहीं आए, और आने के बाद भी आप एक साथ नहीं बैठे, दूर दूर बैठे, बात भी नहीं हो रही, नजर में नजरें नहीं मिला रही, बात क्या है आज? उनका महाराज कुछ नहीं बोले, चलता रहता है। माता जी को पूछा कि क्या हुआ, अरे बोले महाराज, बोले इनको समझाओ थोड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे को जरूरत नहीं समझाने की, बोले महाराज इनको समझाओ। अब वो बोले उनको समझाओ, वो बोले उनको समझाओ। मैंने कहा समझाने के पहले तुम निर्णय करो मेरे को समझाना किसको है मैंने उनको पूछा बाद में समझाऊंगा, पहले ये तो बताओ झगड़ा किस लिए हुआ, तुम वृंदावन आए एटा छोड़ के भजन करने के लिए, यहां झगड़ा क्यों हुआ? उन्होंने कहा महाराज ये मेरे को अखबार नहीं पढ़ने देती है। मैंने पूछा इनको अखबार क्यों नहीं पढ़ने देती? उन्होंने कहा महाराज ये मेरे को अखबार नहीं पढ़ने देते। आप समझ भी होंगे, अब वो एक अखबार घर में आया, पति बोलता है मैं पहले पढ़ूंगा, और वो बोलती है पहला पत्ता मेरे दे दो। अब पहला पन्ना कौन पढ़ेगा पहले? बात सही है आदमी ऐसे जीता है मधु बाबू, व्यवहार में ऐसे जीता है, ऐसे झगड़े खड़े करता है। वो सत्य में बहुत आश्चर्यचकित हो गया, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। आज ये कम से कम 70 और 60 के बीच की उम्र है, और पति बोल रहा है कि मैं पहले पढ़ूंगा पहला पन्ना, पत्नी बोलती नहीं मैं पहले पढ़ूंगी, और दोनों में अखबार की छीना झपटी हो रही है। और पति ने बोला महाराज पहला पन्ना लेती हैं, पढ़ती नहीं, छिपा के रख लेती हैं। क्या कमाल है, ये सत्य है। और ये केवल उस आदमी का सत्य नहीं, हमारा भी वैसे सत्य है। आप देखना आप अपने घर में हम कैसी छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं, हम कैसे कैसे झगड़ते हैं। माने जो बचपना था, जो बच्चों के जीवन की नासमझी थी, वो आज भी हमारे में है। आप सही अर्थों में विवेक जागृत कर लेंगे, सही अर्थों में आप सत्संग करेंगे, जब ध्यान करेंगे नारायण, बोले बुढ़ापे में इतना विवेक आएगा आदमी में, प्रबुद्ध होगा। जो वृद्धावस्था प्रबुद्ध अवस्था है, प्रबुद्ध अवस्था, समझ, वैराग्य, त्याग करने की प्रवृत्ति। विवेकानंद जी महाराज जी ने कहा जीवन के संपूर्ण अनुभवों को जानने के लिए, बोले 32 वर्ष की आयु बहुत हो गई, आप दुनिया के सारे अनुभवों से गुजर चुके होंगे 32 वर्ष की आयु तक, आप को मालूम हो चुका होगा संसार के चीजें क्या है, संसार कैसे चलता है, हमारा स्वभाव क्या है। 32 वर्ष तक आपको समझदार हो जाना चाहिए। अब वो बच्चों की तरह चॉकलेट के झगड़े नहीं होने चाहिए। इसलिए सही ढंग से यदि युवावस्था चली तो आप वार्धक्य अवस्था में जो प्रवेश करेंगे, संबुद्ध प्रबुद्ध अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करने की अवस्था है, वो संन्यास की अवस्था है, अनुभूति की अवस्था, अनुभव की अवस्था है। इसलिए महात्मा जी कहते थे वृद्धावस्था में बड़ा आनंद आता है, ऐसा बोलते थे। बोले भजन करो भजन, वृद्धावस्था में बड़ा आनंद आता है। प्रत्येक अवस्थाओं का अपना एक आनंद है, ये ऋतुओं का चक्र है। आप बच्चे थे, जवान हो गए, आप जवान हैं, वृद्ध हो गए, घबराने की जरूरत नहीं है। आदमी बुढ़ापे से घबराता है, आदमी बुढ़ापे के भय से भयभीत है, बहुत आक्रांत दुखी है। ये समय का परिवर्तन, जन्यानाम जनक कालो जगताम आश्रयो मता, ये समय ये काल संपूर्ण पदार्थों का जनक है, जनक है। ये काल इतना महत्वपूर्ण है नारायण, बालक नचिकेता ने कहा इतना महत्वपूर्ण जो समय और समय का जो परिवर्तन, बोले इस परिवर्तन का जो आधार है ये दुनिया है, इस परिवर्तन का आधार परमात्मा नहीं है। काल का प्रभाव संसार के ऊपर पड़ता है लेकिन काल का प्रभाव परमात्मा के ऊपर नहीं पड़ता है, परमात्मा काल से परे है। भूताच्च भव्याच्च, बोले आपके तीन प्रकार के काल हैं और तीनों प्रकार के कालों से परे वो परम तत्व परमात्मा है, वो अकाल पुरुष। आप सच्ची अकाल बोलते हैं ना, सच्ची अकाल, वो परमात्मा अकाल है, काल से परे है। अब कल मैं इस पर प्रकाश डालूंगा वो काल से परे कैसे हैं, और उस काल से परे परम तत्व परमात्मा को बालक नचिकेता पाना चाहते हैं। बड़ा सुंदर ये श्लोक है, शेष विषय परसों करेंगे, है ना? कल कोई दूसरे महात्मा स्वाध्याय करेंगे, कल के लिए मैं कहीं और जा रहा हूं। एक महात्मा जी थे महामंडलेश्वर गोपाल आनंद गिरी जी महाराज, उनका शरीर छूटा, बहुत उच्च कोटि के विद्वान साधु थे वो, तो उनका कार्यक्रम है 16 कल 12 बजे, तो हमने अनुमति ली कि वह एक दिन साधु के उस उत्सव में जाना चाहते हैं। अपने बड़े प्रिय थे, बहुत महापुरुष थे, तो आप सब लोगों की शुभकामनाएं लेकर के उनके पास जाऊंगा और कल फिर वापस आऊंगा, परसों से फिर अपना शुभ कार्यक्रम होगा। अभी आप सीधे बैठ जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।